औसबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। चलिए सबक शुरू करते हैं। आयात पे जाने से पहले सबक का खुलासा। हमारा आज का सबक शिर्क की कबाहतों से शुरू होगा। किस तरह कौमें तबाह हो जाती हैं शिर्क में पड़ने की वजह से, और झूठी सिफारिशें लोगों को कैसे गाफिल कर देती हैं। फिर हम इस सबक में देखेंगे जो बहुत बुनियादी चीज़ कि अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने काफ़तल लिन्नासी बनाकर भेजा, इसके क्या दो बड़े मानी हैं, और हम फिर इसकी रोशनी में आज अपना अमल भी देखेंगे। आप कह सकते हैं कि इस सबक की ये बहुत बुनियादी आयत है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क़यामत के दिन उन लोगों की क्या हालत होगी जो सारी ज़िंदगी दूसरों के नक्शे कदम पे आंखें बंद करके चलते रहे और हक और बातिल का फ़र्क उन्होंने ना पाया। और कमज़ोर लोग उस दिन लीडरों और सरदारों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि औलाद और माल इंसान को किसके करीब करती है, अल्लाह के करीब या जहन्नम के करीब। ये भी एक बुनियादी टॉपिक है इस सबक का। फिर हम देखेंगे कि फरिश्तों पे घबराहट कब तारी होती है और उस घबराहट को वो कैसे ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस सबक में कि जब लोगों को भरपूर तरीके से बता दिया जाए, समझा दिया जाए, और फिर भी वो ना माने तो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाए। और एक और थीम इसका है कि दुकानदारी और दीनदारी का फ़र्क क्या है, इसका हम एक तकाबुल करेंगे इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि जन्नत को पाने का सिर्फ एक वक्त मुकर्रर है, जब उस वक्त से हम आगे चले जाएंगे तो फिर जन्नत की फ्लाइट मिस हो जाएगी, और फिर जितना मर्जी पुकारें लेकिन वह अन्ना लहमुत्तना वुश मिम मकान बईद, अब हाथ से निकली हुई चीज़ वापस नहीं आती। और हकीकत है, हर नेमत को पाने का एक वक्त होता है। जब हम उस वक्त उस नेमत को नहीं पाते ना, तो फिर बाद में पाने की तौफीक भी छिनती है और बंदा ले भी नहीं पाता। तो इस दुनिया में हिदायत को पाने का भी एक वक्त है। डिटेल से इस पे इंशाल्लाह बात होगी अल्लाह ने चाहा। अब हम वही तरीका इख्तियार करेंगे। आज के सबक का बुनियादी जो आयतों का कवरेज है ना, वो तौहीद और शिर्क का फ़र्क है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी ऐसी आयतों को बहुत ज़्यादा गहराई में जाए बगैर पढ़ लें, और सबक के एंड पे फिर हम उन सब का खुलासा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 22 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम क़ुल लिल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह। ए नबी, इन मुशरिकीन से कहिए कि तुम बुलाओ इनको जिनको तुमने माबूद गुमान किया है अल्लाह के सिवा। अल्लाह ताला देखिए कुल से बात शुरू करते हैं। कुल किसको कहा जाता है? नबी सल्लम को कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनको कहें अल्लज़ीना, वो दो पुकारो किनको, मुशरिकीन मक्का लिख लीजिए। कौन थे वो? अल्लज़ीना ज़अमतुम, जो गुमान करते थे, जिनको तुम गुमान करते हो। ये अल्लज़ीना जो है ना, इसके नीचे लिखिए ये उनके बुत है, गलत ना कह दीजिएगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, कुल नबी को हुक्म, उदु पुकारो किनको पुकारो, मुशरिकीन ने मक्का को पुकारो। क्या कहो? अल्लज़ीना ज़अमतुम, तुम पुकारो उनको जिनको तुम पुकारते हो, यानी इन मक्का वालों को दावत दे दो कि तुम बुलाओ उनको जिनके बारे में तुम गुमान करते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा। मतलब यह है कि देवियों और देवताओं को पुकार लो जिनको तुम अपने औलिया और मददगार समझते हो। पुकारो से यहाँ क्या मुराद है? मदद के लिए पुकारो। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद से हाथ खींच ले तो इन बुतों को, इन देवियों देवताओं को कहो कि तुम्हारी मदद करें। ये नहीं कर सकते, क्या होगा? ला यमलिकूना मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वल अर्दी, वो तो जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते ना आसमानों में। खुद ही जवाब बता दिया कि जब ये पुकारेंगे तो उस पुकार को जवाब आएगा नहीं, क्योंकि उनको तो एक जर्रे की भी इजाजत नहीं। ये जो लफ्ज जर्रा है ना, चींटी के अंडे को कहते हैं। इसी से लफ्ज जुर्रियत भी है। जरा का लफ्ज भी सूरत निसा में भी पढ़ा था और भी जगह पढ़ा है। फैल जाने का मानी है, क्योंकि जब चींटियां होती है तो फैल जाती हैं, छोटे छोटे अंडे होंगे तो फैल जाएंगे। मुराद है बहुत छोटी चीज। आज के दौर में लोगों ने इसको एटम कहा, लेकिन अब एटम से भी छोटी चीज़ें जब डिस्कवर हो रही हैं तो अगले सालों में हो सकता है ज़र्रा का तर्जमा वो इससे भी छोटी कोई चीज़, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या कोई इससे भी अंदर की चीज़ करे। मुराद ये कि एक कतरे बराबर, एक सुई की नोक पे लगी हुई चीज़ का भी उनको इख्तियार नहीं है। कभी इसको सोचें, और कब्रों पर रश देखिए, और लोगों का, बुजुर्गों के आगे झुकना और दबना देखिए। اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہ ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں کوئی ان کی شراکت ہے. یہ جو لفظ ہے نا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا، ہما کو ہما کر کے لکھ لیجئے نیچے، آسمان اور زمین، یہ ضمیر ہے جڑ کے آئیے اس لیے پتہ نہیں چل رہی. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اکثر ہوم، ہما، ہننا اس میں پڑھتے ہیں، تو فی کی وجہ سے ہو ہی میں بدل گیا، کیونکہ فی حرف جر ہے اور اس کے بعد والے لفظ کے اوپر زیر آ جاتی ہے. تو لہٰذا ان دونوں میں من شرکن، شرک کا لفظ جو ہے نا یہاں شراکت کے معنوں میں ہے، لکھ لیجئے، اور نہیں ہے ان کی کوئی شراکت آسمان و زمین میں، یہ مطلب ہے. وما لہم من ظہیر، اور نہ ہی اس میں کوئی ان کا کوئی مددگار ہے. کیا کہا کہ وما لہم فیہما من شرکن، ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی شراکت نہیں ہے، کہ ان کو اللہ نے پہاڑوں کا ذمہ دے دیا، ان کو بادلوں کا دے دیا، آسمان تم رکھ لو، زمین تم رکھ لو. اصل میں پیچھے وہی قوم سبئی چل رہی ہے جنہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈال دیا تھا کہ دنیا میں جو خیر آتی ہے نا یہ حکمرانوں کی وجہ سے آتی ہے اور ہم تمہیں اللہ سے لے کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ان سے لے کر آؤ. اور یہی کلیہ پھر اتنا بڑھ گیا کہ مشرکین عرب کے ہاں دو طرح کے پھر مشرکانہ اعتقادات پائے جاتے تھے. ایک عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ محبوب ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ اس کی بیٹیاں، اور وہ بیٹیاں کس کو کہتے تھے؟ فرشتوں کو. بیٹیاں ہوں یعنی فرشتے، یا کچھ محبوب انسان ہوں، شخصیات، بڑے بڑے نام کہہ لیجئے، وہ کہتے تھے کہ ان ہستیوں کی سفارش سے وہ آخرت میں بچ جائیں گے، یہ عقیدہ تھا. دیکھیے اس کو لوگ کیسے ٹیلی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں، اب بات کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات نہ کلوائے دے، کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا باپوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں. یہ تو آپ سب کا بھی اپنا تجربہ ہوگا کہ اپنی ماں سے زیادہ آپ کی باپ سے ہی بنتی ہے موسٹلی، اللہ ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ بات تو سچ ہے، بڑی معروف ہے کہ ماں کو بیٹا پسند ہوتا ہے، ماں بیٹے کے لیے جیتی ہے اور باپ جو وہ بیٹی کے لیے، یا کہہ لیں کہ ماں بیٹے کی خواہش نہیں رد کر سکتی تو ماں جو وہ بیٹی کی نہیں. جتنی ڈانٹ بیٹی کو پڑتی ہے اگر اتنی بیٹے کو ماں ڈالے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. انہوں نے نوس ولہ یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ جب یہ فرشتے اللہ پہ زور ڈالیں گے نا تو اللہ کو ماننا ہی پڑے گا، لپٹ جائیں گے، پیار کریں گے، نہیں روئیں گے، پھر اللہ جھلجھلا کے کہیں گے اچھا جاؤ جو ان کا کام کر دو، یہ بہت ضد کر رہی ہے. نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اسی طرح دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک تو ہے، لیکن اس نے اپنے کچھ نائب مقرر کیے ہوئے ہیں، جس کو آپ کہہ لگ سکتے ہیں کوآرڈینیٹرز کیے ہوئے ہیں، یا اپنے جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہیلپرس کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ اختیارات دے دیے. اور اس میں مثال دیتے تھے دنیا کے بادشاہوں کی کہ دیکھو جو بادشاہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی تو نظام چلانے کے لیے وزیر مقرر کیے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے نظام کو چلاتے ہیں لیکن ساتھ اس کی مددگار ہیں. تو لہٰذا جیسے دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کسی وزیر کو رشوت دے کر ہم حکومت کا کام لے لیں گے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی واقفیت نہیں ہے آپ کی، وہ آپ کا کام کرا دے گا، تو وہ کیا فیل ہوتا ہے کہ اب وہ ہم جس دیکھیں نا ایک بندہ کسی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے تو ہم اس کو حکمران یا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں کہہ رہے ہوتے. یہاں سے آپ کو شرک کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ سمجھ آ سکتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی آفس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، کسی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص اختیار تو رکھ رہا ہے لیکن وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے، ہم اس کو جانتے ہوں، اور ہمارے لیے وہ کوئی کاغذوں میں کمی بیشی کر دے، پیسوں میں کر دے، تو ہم کیا سوچیں کہ دیکھو اس کے ذریعے سے ہم نے کام نکال لیا. ٹھیک ہے، آج جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، جب آپ ان سے کہنا آپ ان بابا جی کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں تو وہ آگے سے پتا کیا کہیں گے، ہمیں پتہ یہ خدا نہیں لیتے تو یہ خدا سے ہی ہیں. وہی مثال ہے کہ کلرک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پتہ یہ وزیر اعظم نہیں، لیکن اس کی پہنچ ہے وزیر اعظم تک، یہی ان کا مسئلہ تھا. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا تو ایک دیو مالا ہے جس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میتھولوجی، لفظ سنا ہوا کبھی آپ لوگوں نے؟ پڑھا بھی ہوگا کچھ لوگوں نے، ہمارے یہ اسکول کے جو ایم اے اور بی اے کا سبجیکٹ ہے اس میں یہ پڑھائی جاتی ہے کسی حد تک، کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں. ایک پوری چین ہے، زنجیر اس کی، اور دیویوں اور دیوتاؤں کا جو تصور ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو جو مسلمانوں کا ایمان بالملائکہ ہے نا، بظاہر دیکھا جائے تو بہت باریک اور نازک سا فرق دکھتا ہے، عام آنکھ والا تو وہ فرق جان ہی نہیں سکتا، لیکن جس کو علم ہوگا، جس کو پتہ چلے گا کہ فرشتے کیا ہیں، اللہ نے ان کو کام دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ کیوں کام لیتے ہیں، اچھا اگر فرشتوں سے لیے جا سکتے ہیں تو داتا صاحب سے بھی لیے جا سکتے ہیں نعوذ باللہ، پھر معین الدین چشتی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ इल्म बंदे को मार्फत के रास्ते देता है और इल्म बंदे को तौहीद और शिर्क का फर्क बता देता है। लिहाजा ऐसी बातें कर कर ये लोगों को गुमराह करते थे। अल्लाह ताला कहते जाओ इनसे पूछ लो, जाओ इनको पूछो कि क्या ये सारे हालात ठीक है, कुछ कर सकते हैं तो करवा लो, नहीं। एक शिर्क तो ये था, समझ आ गई बात, कि ये हमारे काम निकाल देंगे। इसी की एक बिगड़ी हुई शक्ल थी, यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी जो हमने बात पढ़ ली है ये ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई शक्ल है। इनकी जो देव मालाई मुश्किराना तसव्वुराती तकसीम थी, ये फरिश्तों पर ईमान की एक बिगड़ी हुई शक्ल थी। ठीक है, I 23 में एक दूसरी किस्म का शिरक है। वला तनफो शफा तो इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहू, और न नफा देगी उसके यहाँ कोई सिफारिश मगर इसी के हक में जिसके लिए इसने इजाजत दी हो। हत्ता इजा फुज़्ज़ियन कुलूबिहिम, यहाँ तक कि जब दूर कर दी जाती है घबराहट इनके दिलों से। कुलूबिहिम से नीचे लिख लीजिए, हिम से मुराद फरिश्तों के दिल, फरिश्तों के ऊपर से घबराहट उतरती है। कालू तो वो कहते हैं, माजा क्या, काला रब्बुकुम, फरमाया तुम्हारे रब ने, जो दूसरे सुन चुके होते हैं वो क्या कहते हैं, कालुल हक, हक ही कहा है जो भी कहा होगा। वहुवल अलीयुल कबीर, और जो कुछ इसने फरमाया है वो हक है और वो बहुत बुलंद बाला और बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा यानी इंसान को हिलाने वाली आयत है। फरिश्तों की घबराहट का जिक्र है, ये किस वक्त की घबराहट है, ये कब होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ कहा। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई काम करवाने होते हैं तो फरिश्तों को खबर देते हैं। जिस तरह इंसानों में से मुख्तलिफ इंसानों के दर्जे होते हैं ना, मिसाल है, सिर्फ अपनी समझ के लिए हम समझ रहे हैं, अल्लाह से नहीं इसको जोड़ रहे। आप देखिए कि वजीर आजम की मिसाल जो पीछे ली उसी को ले ले, वजीर आजम के साथ बिल्कुल एक उसका सेक्रेटरी होगा ना, हो सकता है वो उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठ जाए, हो सकता है अगर जरूरत के वक्त में उसके बेडरूम में भी जाना पड़े तो चला जाए, वो अपने घर पे भी उसको बुला ले। अब वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये कर लो वो कर लो, वजीर खजाना को ये कह दो, वजीर ज़राअत को ये कह दो, दिस एंड दैट। ठीक है, अब वो जो क्लोजअप सर्किट में रहने वाला शख्स है उसको वजीर आजम की बात सुनने का, आने का, उसके घर में जाने का ज्यादा तजुर्बा मौजूद है ना। ठीक है, अब जब वो तजुर्बा है तो कभी वजीर आजम उसको बुलाएगा या कहीं बात करेगा तो वो रिलैक्स फील करेगा ना। अब नोट कीजिए, दूसरे लोग जिन तक वो बातें जाती हैं जो कभी कभी उसको मिलते हैं, जिसकी रेंज नहीं है, अब क्या होगा, कभी कई रात जाते अगर वजीर आजम जो उसको बुला ले या उससे बात करे तो उसको घबराहट तारी होगी ना। किसी भी बड़े इंसान जिससे हम मरूब हों या जिससे मोहब्बत करते हों या जिससे हमारा कोई ताल्लुक हो, हम जब उसके करीब होते हैं तो हमारा दिल नहीं धड़क रहा होता, ये कैफियत है। अब अल्लाह के लिए नहीं, फरिश्तों के लिए कह रही हूँ। जैसे इंसानों के मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, आसमानों में फरिश्तों के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरिश्तों को जब काम देने होते हैं तो कुछ करीब के फरिश्ते, आप पढ़ते हैं आगे भी पढ़ेंगे, मुकर्रबीन जो हैं, जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते वो मुकर्रब हैं, मिसाल है। अब जब अल्लाह ताला कोई बात कह रहे होते हैं ना, आसमानों में प्लानिंग हो रही होती है, कोई मीटिंग है, आप इमेजिनेशन में अपने तौर पर ले लें, जो भी समझ लें, अल्लाह ताला जब बात करते हैं ना तो आम फरिश्ते घबरा के एक किस्म के बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह की आवाज़ सुनकर उनकी होश गुम हो जाते हैं। चंद फरिश्ते जिनको अल्लाह ने खुद ब खुद ही वो सलाहियत दी है कि जो अल्लाह की बात सुन सके, वो उस वक्त होश में होते हैं या वो बात को जरा ज्यादा गौर से सुन रहे होते हैं। जब थोड़ी देर गुजर जाती है, हालात संभल जाते हैं, तो फिर वो पहलों से पूछते हैं जिन्होंने सुना है कि भाई माँ सकाल रब, क्या कहा तुम्हारे रब ने, तो उस वक्त की कैफियत है। ये एक तफसीर है फुजियान, समझ आ गई बात, जब वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, घबराहट दूर हो जाती है, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं ना, कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ घबराए होते हैं, फिर जब बात करें तो कहते हैं पता नहीं क्या कह गए, मुझे नहीं समझ भी क्या कह रहे थे, एक कैफियत है। दूसरी इसकी तफसीर क्या है कि ये क्यामत के दिन की बात है, जब क्यामत के रोज कोई सिफारिश करने वाला किसी के हक में सिफारिश की इजाजत तलब करेगा, उसकी कैफियत जहां बयान की गई कि इजाजत तलब करने की दरख्वास्त भेजने के बाद सिफारिश करने वाला और जो सिफारिश कर रहा है दोनों बेचैनी के आलम में डरते और कांपते हुए जवाब के मुंतजर हैं। आखिरकार जब ऊपर से इजाजत आ जाती है और सिफारिश करने वाले के चेहरे से सिफारिश करने वाले को पता चल जाता है कि मामला ठीक है तो उसकी जान में जान आती है, तो फिर वो पूछता है कि बताओ ऊपर से क्या जवाब आया है। बात समझ आई है? देखिए, क़यामत के दिन की सिफारिश बरहक है, नबियों की सिफारिश होगी, कुरान की सूरतों की सिफारिश होगी, इसी तरह से कुछ नेक आमाल को भी सिफारिश का जरिया बनाया जाएगा। तो वहाँ क़यामत के दिन की घबराहटों का जिक्र है कि इवन किसी की सिफारिश पे अल्लाह ने माफ़ कर भी दिया। मिसाल है कि नबियों की सिफारिश से अल्लाह ताला किसी को माफ़ करता है, तो नबी से पूछेगा वो उम्मती जिसका दिल उस वक्त फौजिया घबरा रहा होगा कि मैं इस वक्त किस हालात में हूँ, कैसे हूँ, तो फिर वो उनको जब पता चलेगा कि हमें बख्श दिया गया तो ठीक है, ये बात हो गई है। बात वैसे यानी ये भी एक बात समझ आती है कि क़यामत के दिन की घबराहट का जिक्र भी इसमें हो सकता है। इसी तरह अगर आप देखें तो घबराहट के और भी बहुत सारे वक्त होते हैं। एक इंसान जब दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां करता है और अल्लाह की मर्जी को तोड़ता है, उस वक़्त तो मस्ती में होता है ना, उसको नहीं पता चलता। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब वक्त गुजर जाता है, वो सारे हालात गुजर जाते हैं गुनाह के, तो बाद में उसके दिल पर एक खबर आ जाती है। मैं आपको एक रिवायत पढ़ के सुनाती हूँ, सही बुखारी की है, अबू हुरैरा से। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आसमान में कोई हुक्म नाफिज फरमाते हैं तो सब फरिश्ते खुशियो खुदू से अपने पर मारने लगते हैं और मदहोशी जैसी तारी हो जाती है। सोचिए तो सही, अल्लाह की जात, पुलिस मैन राह जाते रोक ले, कोई रास्ते में हमें रोक ले तो क्या हाल है? अल्लाह मालिकल मुल्क, अल्लाह अकबर, सोचेंगे तो अभी भी आपका दिल बंद हो जाएगा। जब इनके दिलों से घबराहट और हैबत और जलाल का वो असर दूर हो जाता है तो कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, दूसरे कहते हैं कि फलां हुक्मे हक इरशाद फरमाया। इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है, वो भी सुन लीजिए इब्ने अब्बास से। किसी सहाबी ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, यानी किसी सहाबी की बात इब्ने अब्बास सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारा रब तबारक इस्मो, जब कोई हुक्म देता है तो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह करने लग जाते हैं। इनकी तस्बीह को सुनकर इनके करीब वाले आसमान के फरिश्ते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, फिर इनकी तस्बीह को सुनकर इससे नीचे वाले आसमान के फरिश्ते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि ये नौबत आसमाने दुनिया तक पहुंच जाती है और सब के सब आसमानों के फरिश्ते तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं। फिर वो फरिश्ते जो हमलाए अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्तों के करीब हैं, इनसे पूछते हैं आपके रब ने क्या फरमाया। ऐसे ही ना जैसे ये मैं बात कर रही हूँ और एकदम माइक बंद हो जाए, या इधर उधर इतनी शोर हो, बच्चे शोर कर रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं तो मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, तो जब वो खामोशी हो तो फिर आप ये अगले वालों से पूछेंगे ना कि क्योंकि आप आगे बैठे हुए थे तो अर्श उठाने वाले फरिश्ते वैसे भी मुकर्रबीन हैं और अगर आप देखा जाए तो ज़र्फ़े मकान की नस्बत भी वो करीब है, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपके रब ने क्या फरमाया, वो बतला देते हैं। फिर इसी तरह इनसे नीचे के आसमान वाले ऊपर वालों से यही सवाल करते हैं, यहाँ तक कि सवालों जवाब का ये सिलसिला आसमाने दुनिया तक पहुँच जाता है। अल्लाह अकबर। गैब के मामले हैं, बस इसको डरते दिल से सुन के अपने दिल में झांक के देख लीजिए हम अल्लाह की इस बात को इस वक्त सुनते वक्त दिलों को क्या बातें हैं। देखिए, अल्लाह जाहर कोई हुक्म दे फरिश्तों को, एक तफसीर किसी काम के करने का, बारिश पर 100 बच्चा हो ये वो, या अल्लाह ताला आज क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश कबूल करे ना करे, उसमें और इस वक्त एक कुरान के अल्फाज जो मेरे आपके सामने, इसमें क्या फर्क है? एक फर्क है बस, मैं आज की जुबान से आपको बता सकती हूँ, बता दूँ, ऑडियो और विजुअल का फर्क है। वो विजुअल होगा, हम देख रहे होंगे या फरिश्ते देख रहे हैं या जिस हालात में, आज हम ऑडियो फॉर्म में अल्लाह की बात मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं। ऑडियोज अल्लाह की हैं, बल हुआ कलाम अल्लाह। कुरान सुनते वक्त अपने दिलों को चेक करना चाहिए, गर्मी सर्दी हाल ये वो, बीमारी दुख परेशानी, जाके क्या करना, करके क्या है, किधर जाना, जब तक इससे बेनियाज नहीं है, इस बात की दलील है कि फुजिया वाली कैफियत नहीं। और यहाँ लफ्ज है ना फुजिया और अन, इसको भी नोट कीजिए, फजा कहते घबराने को, लेकिन अन लग गया तो घबराहट दूर होना, बिल्कुल वही बात है जो रागीबा और रागीबान की कहाँ पढ़ाई थी आपको, सूरत बकरा में, वमई यरगबु मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सहु, याद आ गई? यानी रगबा रगबत करना, टू इनक्लाइन, लेकिन रगबा अन फ्रॉम के मानों में ऑपोजिट मानों में आता है, तो यहाँ वही मानी है। और फजा होता है जिसको आप इंग्लिश में कह लीजिए एक्टिव वॉइस, और फुजिया पैसिव वॉइस है, मजहूल है या यानी पता कोई नहीं क्यों हुई, इसमें सोर्स नहीं पता होता, इसमें अमूमन फाइल का जिक्र नहीं होता। तो गोया कि ये शिद्दत की बात है कि उनकी घबराहट दूर होती है। क्या कुरान पढ़ते वक्त हम भी तो नहीं बाद में थोड़ी देर बाद किसी को पूछते क्या कह रही थी, क्या लिख रही थी, कौन ही मार रहे हैं, लिख नहीं पाए तो साथ वाले को कि जरा बताना तुमने क्या लिखा है, या बीच में फोन पे नजर पड़ गई, मैसेज पढ़ने लग गए, अब का इंतजार करते हैं, ब्रेक हो कब उठूं जाऊं मैसेज करो, फिर बात छुन गई, अगली बात आगे पीछे साथ नहीं पूछ लिया, अभी क्या कहा था जरा बताएं, तो फिर दूसरे को क्या कहते हैं, वो जरा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हम अपने आप को पूछें, देखिए अल्लाह के कलाम की महफिल में इंसान बिल्कुल उसी कैफियत में होता है जिसमें क्यामत के दिन की हाजिरी होगी। ये जो नमाज है ना दिन में 5 वक्त की, ये क्यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने की रिहर्सल है। आज दिन में 5 बार खड़ा करके प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि उस दिन घबरा ना जाओ। इसलिए जो बेनमाजी है ना क्यामत के दिन उनके होश उड़े होंगे, आप कह लीजिए उनके हाथों के तोते उड़े होंगे। और अगर इल्म की महफिलों में हुसन ना हो, कटी फटी महफिलें, जो आ रहा है जो खा रहा है जो पी रहा है जो जा रहा है, जिसका दिलचारा टांगे को लंबी करके बैठा है, कोई टेक के बहाने उधर बैठा है कोई उधर बैठा है, आप बता सकते हैं कि उन महफिलों में कोई बरकत आ सकती है? बीच में सेलफोन की भी इजाज़त है, कोई बात नहीं, खवातीन है, बीच में इजाज़त है कि बच्चे भी गोदों में बैठे हैं, बच्चे भी और ये भी है, और खा भी लो और पी भी लो। और बाज़ दफ़ा तो जुल्म की हद है कि दर्स शुरू होता है, बड़े मॉडस्कॉट घरों में जब कभी दर्स होते हैं ना, तो ड्यूरिंग द दर्स फिर एक मेड आती है, बड़ा खूबसूरत सजा हुआ स्टील का नहीं चांदी का ट्रे टाइप होता है और उसमें रंग बिरंगे जो, और वो आके सर्व शुरू हो जाती है, नाकाबले बर्दाश्त हो जाती है उस वक्त ये बात। लेकिन पब्लिक होती है तो बाज़ दफ़ा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप खुद अपने आप को इस वक्त लें, आपके दिल की हालत है फुजिया वाली, या मेरे तो लगता है हमारी हालत फुजियान वाली है, बेखौफ ही हो गए। हदीस में आता कुरान पढ़ते हुए रो, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो, ये छोटी बात नहीं है। एक अदालत का नोटिस आ जाए ना, सदर वजीर की तरफ से छोड़ दीजिए, कोई टिकट आ जाए हमारे पास किसी का कि आपकी गाड़ी गलत खड़ी थी, आपको 500 पाउंड का या 500 का टिकट भेज गए, तो हमारे हाथों के तोते उड़ जाते हैं। इस कुरान को पढ़ते हुए हमारे तोते क्यों नहीं उड़ते, इतने रिलैक्स्ड हम, मर्जी से मर्जी, हर काम में मर्जी, मर्जी से आना मर्जी से जाना, मर्जी का वक्त मर्जी मर्जी। तो दुआ कीजिए, और ये मांगने की चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे नहीं हैं, तो अल्लाह का शुक्र करें, उसको बढ़ाएं, ऐसे लगे आपको देखकर कि आप स्टैचूज हैं और आपकी आंखें भी रो रही हैं, आपका दिल भी रो रहा है। कब पूरे इस सफर में मेरी आंखों से आंसू निकले, इन 22 पारों में कितनी दफा मैं रोई आयतें पढ़ के। और मैं यकीन करें आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, एज अ टीचर क्लासेस के अंदर बात जवा कोई एक शख्स ऐसा होता है, मुझे कई सिस्टर्स अपनी शुरू के सफर से लेकर आज तक की याद आ जाती हैं, सिर्फ एक उनकी मौजूदगी क्लास में मेरे से वो बातें उगलवाती थी कि ऐसे लगता था कि बस मैं बोलती ही जाऊं और सिर्फ ये एक है तो बाकी भी इनके बहाने सुनते ही जाएं। आंखें झुकी हुई, दबे हुए, हर्षियत कांपते वाले चेहरे, किसी का रोना, किसी का चेहरे का रंग लाल होना, मतलब ऐसे पानी टप 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 गिरता था। हमारी एक ऐसी स्टूडेंट थी एक क्लास में कि जब क्लास शुरू होता था ना उसके आंखों से फिर एक टिश्यू उठाती थी फिर दूसरी, आखिर उसकी दोस्तों ने छेड़ डाल दी थी सुबह क्लास शुरू होती थी कि जरा साथ टिश्यू पेपर रख लो डब्बा, उसको टिश्यू पेश कर रही होती थी साथ वालियां, इतना वो रोती थी। और मैं फील करती हूँ जितनी हमारी दुनिया की ये मसरूफियात और भागदड़ें बढ़ती जा रही है ना, और मजबूरी कह के आते हुए भी तो रस्ते में 4 काम करके और जाते हुए भी करने, ये मजबूरी है हमारी, ये तो नहीं कि दिल हरे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़े अच्छे हैं सबके, लेकिन ये जिंदगी की जो मसरूफियात है ना इन्होंने मैं खा दिया। मैं सुबह से लेकर इस वक्त तक लिटरली जान के नाम मैं कभी को फोन लेती हूँ, सबको बता, करता भी कोई नहीं, सिर्फ ये लोग करते हैं जो हमारी आपस में मैसेजिंग और टेक्स्ट होता है, शायद कभी मेरा हाल महीने में एक बार कोई 1 या 2 मिनट की बोल के बात होती है ना, मैं सुबह उठ के घर वालों से बोलती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि सुबह से लेकर अब क्लास में आने पढ़ाने तक मैं गिन के बता सकती हूँ कितने जुमले बोले हैं, एक लफ्ज नहीं बोली मैं, क्यों, मेरा दिल कह रहा था मैं इसको समझूं, मैं छोटी बात तो नहीं आपको पढ़ाने आ रही ना। अब आप देखें ना कि उस्ताद के हाथ में तो कितनी बात है, मैं एक आयत पे जोश दिए बगैर आगे गुजार दूं आपको लगेगा भी नहीं वो आयत आई थी, और अगर उसको एम्फेसाइज करके बात करूं तो हो सकता है आपके, अच्छा मैंने तो तर्जुमे में ये गौर ही नहीं किया था, फर्क पड़ता है ना। तू इस दिल को खाली करके बैठे। आंखें झुकी हुई हो, रोए हो, दबी हुई शक्ल है, और आपके चेहरों का ये हुसन जो है ना, ये दूसरे से बात करवाता है। आप होंगे कि जो इस महफिल की रूहानियत को बरपा करेंगे, और ये दिल की कैफियत है, ये ऊपर से नहीं बोझ की जा सकती। हत्ता इज़ा फुज़िया अन क़ुलूबिहिम, यहां से एक और बात पता चलती है कि फरिश्तों के भी दिल होते हैं। कैसे होते हैं अब हमें नहीं पता कि हमारे हार्ट वाला दिल है या कौन सा है। रिवायात से भी फरिश्तों के दिली कैफियत का कुछ तस्करा मिलता है। कालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम, एक और बात इससे लिख लें, फरिश्ते भी अल्लाह को रब मानते हैं, यानी वो रब समावाती वल अर्द है, इंसानों का रब है ना। और रब आपको पता है, रब यो रब तरबिया, जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला, सस्टेनर, काम करने वाला, यानी फरिश्तों की भी जरूरियात को रब ही पूरी करता है। इमेजिन तो करें, मेरा आपका रब कितनी बड़ी जात है, वो किस तरह वो हमारे लिए ये सारी चीजों को लाता है, और हम उसका हक अदा करने पे आ जाएं, करने की कोशिश कर लें, वल्लाही हम नहीं कर सकते। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि माँ कदरुल्लाह हक का कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर का वो हक ही अदा नहीं किया। आपको पता है कि आसमानों के अंदर सोने और चांदी बरस रही है। अल्लाह के नबी जब मेराज के मौके पे गए थे तो आपने सिदरतुल मुंतहा पे सोने की टिड्डियां गिरती भी देखी। वो क्या होगा किसी दुल्हन का इस्तकबाल, और क्या यायतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजीला रब्बिकि रादियतम मर्दिया, ये उस बादशाह और मालिक के घर का दरवाजा है। हत्तबुज़ियान क़ुलूबिहिम, अल्लाह के घर के अंदर खड़ा होकर इंसान, मैंने देखा लोग वहां भी झगड़ रहे होते हैं, और ये उसी की किताब है। जिसका आसमान देखा, जिसकी गैलेक्सीज देखी, उसी का घर भी है, उसी का कुरान भी है। और मैं सोचती हूँ ये कुरान है जो अल्लाह तक लेके जाता है आपको, बिलीव मी, ये अल्लाह की किताब दिलों को हर फिक्र से, हर गम हम से आज़ाद कर देती है। वमा कदरुल्लाह हक कदरी वलर्दु जमीयन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावात والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اما يشركون, जैसे ये सफे है ना, इस तरह हदीसों में आता है कि आसमानों पे फरिश्तों की सफे हैं, और यहां जाने को मोमिन का दिल तड़पता है और बेचैन होता है। कभी सोचेंगे सब झुक रहे हैं, अब देखिएगा कैसे लगेंगे। मैं जब बहुत छोटे भी उम्र का जो हिस्सा सोचती ना, ये मंजर बहुत नजरों में खुपता था, सब एक डायरेक्शन। दुआ कीजिए अल्लाह आज नबी की उम्मत को ऐसे फोकस्ड करते हैं। और देखिए, कोई ये भी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ आपको गौर कराऊं, जब कभी मौका मिला वहां जाके अल्लाह ने गौर कराने का, तो वो तो बात की बात है। यहाँ देखिए कि मैं एक छोटी सी रोक के बताती हूँ। देखिए किबला मिडल में है ना, अल्लाह अकबर कबीरा सुभान अल्लाह। अब आप सब जरा गौर से देखिएगा मैं उसको, ये किबला है ना, लोग चारों तरफ है ना, मुख्तलिफ रुख होते हैं सबके, बात वाजे है मेरी, सबका रुख फर्क है ना। इधर वालों ने इधर मुंह किया हुआ है, इधर वालों ने इधर किया हुआ है, इन्होंने हर एंगल पे डायरेक्शन फर्क है ना। ये भी तो हो सकता था ना, इमेजिन कीजिए कि यहां खाना कबा होता और सब सीधी रुख में होते हैं, राइट, पॉसिबल है कि नहीं। जब पहली दफा मक्का जाते हैं तो ये चीज ही नहीं समझ आती। यहां तो हम जानवर बिछाते हुए इधर से जरा से इधर कर देना तो फतवों पे फतवे शुरू हो जाते हैं लोगों के, कि आपने तो पता नहीं क्या कर दिया। आप नोट कीजिए, ये कायनात का दर्स है, सबक है, सारे इख्तलाफात के बावजूद, रंगो नस्ल के फर्क के बावजूद, डायरेक्शंस के फर्क होने के बावजूद, सजदा एक को करो। इधर वाले इधर से कर लो, इधर वाले इधर से कर लो, इधर से कर लो, इधर से करो, करो एक को, ये है तौहीद। अगर एक तरफ कर दिए जाते ना रुख, तो कायनात का एक खामोश सबक यह था कि नहीं, बस एक खास नहज है मुसलमानों की और दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा दीन कितनी क्वालिटी का दीन है, कितना खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को लेके आता है। और जो लोग आप में से जा चुके हैं उन्होंने इस मंजर को किया। ये जहाँ की ऊपर की तस्वीरें हैं ना, ये जहाँ ये डोम है, ये छत है, आपने देखा होगा, अमूमन औरतों को नहीं जाने देते। आज से चंद साल पहले अल्लाह ने तौफीक दी, रमज़ान था या क्या, तब इतनी सख्ती नहीं करते थे औरतों के जाने पर, शायद तब ये नया नहीं बना था। मेरा फेवरेट स्पॉट जो थी ना, वो इनके पास ऊपर थी, छत के ऊपर, रोज़ा भी वहीं खोलो, पढ़ो भी, ऊपर जाओ भी, यानी इस तरह लगता है कि हम बिल्कुल अल्लाह के करीब आ गए। अब वो कैफियत मैंने वो जो आजकल के स्फेयर्स बने हुए ना, जो उन्होंने टेम्परेरी बनाया, उसमें जाके फील की, छतों के अंदर, बरामदों के अंदर झुकना मज़ा ही नहीं आता, ऐसे इतने पर्दे बीच में। तो ऐसे लगता है कि बस इंसान अपने आप को बेबस कर दे और फील होने लगता है कि अल्लाह की ज़ात है। तो इसकी बड़ाई को जानना है, हम अपने गमों से निकल आएंगे, परेशानियों से निकल आएंगे, नफे नुकसान से निकल आएंगे, अपने ग्रजिस खत्म कर देंगे। उसने मुझे ये कहा, वो मेरे से नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरा हक नहीं दिया, वो नहीं किया, तुम हो क्या? इतना 1.5 फुट का बंदा या 5-6 फुट का बंदा अपनी जात को ही मनवा रहा है आज तक, तो उस रब को नहीं मानते जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ पैदा किया। और हकीकत है कि जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं, फिर उनके लिए हर चीज माननी आसान होती है। हम सब अपने आप को पूछें कि क्या हकीकत में मेरे दिल में इसकी खशियत है। और याद रखिए कि जिसने कायनात के सबक को पढ़ लिया, फिर वो फेल नहीं होगा, फिर अल्लाह उसकी कदर जरूर करेगा, फिर अल्लाह ताला आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। इसलिए ये 4 दिन की जिंदगी इसके दुख गमों को पीछे डाल के दीन की बड़ी तस्वीर देखें। और ये मेरा ईमान है कि जब सीने में कुरान आता है, तबीयत पैदा होती है, बिलीव मी, ये फिर उस वक्त की कहानी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कालुल हक, फरिश्ते कहते हैं वो हक है, जो कहे हक है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुकता है, अब आप वापस नोट्स पे आ जाएं। हक है ये, रब की बात हमें समझ आई है कि नहीं, उसकी ग्रामर समझ आई है कि नहीं, उसका लफ्जी तर्जमा समझ आया कि नहीं, लेकिन ये यकीन रखो कि रब कहता हक है। कितनी बड़ी सुपुर्दगी है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि अपना आप रब के सुपुर्द कर दे। मुझे शेर आता नहीं है फारसी के अलामा इकबाल का, लेकिन उसके लफ्ज में सुपुर्दम का लफ्ज बार बार आता है। चुमी गोए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अपना आप तेरे सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि तू वो है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये ट्रस्ट तौहीद है, अपना सब कुछ उस मालिक को दे के को, तू मेरा नुकसान नहीं करेगा। बीबी हाजरा ने भी तो यही कहा था ना अपने शौहर को, जब इसी घर की आबादी के लिए उनको छोड़ा था, तो क्या कहा था ये बता दें कि अल्लाह ने कहा आपको कि छोड़ दो या मुझे, इतना ही कर, यस या सर हिला दिया होगा, कहा फिर जाए, फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। वहु अलियुल कबीर, और वही बुलंद भी है और बड़ा भी है, बहुत बुलंद बाल है।
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير